आरव आयु के काम से हॉस्पिटल आया हुआ था। उसे वहां अयान से मिलना था, लेकिन पहले आरव फैज से मिलने गया। फैज के साथ कुछ बातें करके उसे चिढ़ाने के बाद वो अयान के पास आया। अयान अपने केबिन में किसी पेशेंट के साथ था। अचानक आरव को वहां देखकर अयान को हैरानी भी हुई। वो आरव को वेट नहीं करवाना चाहता था, लेकिन पेशेंट भी जरूरी था। आरव को देखते ही उसने धीरे से कहा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। आरव ने बिना कुछ कहे जवाब में कंधे उचका दिए और फिर वहां लगे काउच पर जाकर बैठ गया। पेशेंट से बात करते हुए अयान की नज़र आरव पर गई, जो काफी शांति से बैठा था। उसे देखकर अयान ने अपने मन में कहा, भाई और वेट कर रहे हैं, जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात ही होगी, वरना अपनी बात कहने के लिए वो मुझे खींचकर कहीं और ले जाते और पहले अपनी बात बताते। अयान ने पेशेंट को कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देने के बाद कहा, आप एक हफ्ते तक इन मेडिसिन्स को कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद हम वापस कुछ टेस्ट करेंगे। अगर दवाइयाँ पॉजिटिव असर दिखाती हैं तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस आदमी ने अयान को थैंक यू कहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही अयान जल्दी से आरव के पास आया और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि आप नॉर्मल बात करने के लिए हॉस्पिटल तक आ जाओ। हॉस्पिटल तक आना तो ठीक है, यहाँ बैठकर वेट कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हाँ ज़रूरी है, तभी यहाँ तक आ गया, आरव ने जवाब में कहा। मुझे आयु के बारे में बात करनी है, उसने आगे कहा। आयु का नाम सुनकर अयान की आंखें बड़ी हो गईं। वो झट से बोला, तो क्या इतनी दूर आप मुझे डांटने के लिए आए हैं? सीरियसली भाई, आपको अपनी वाइफ की गलती नहीं दिखती और मुझे डांटने के लिए यहाँ तक आ गए? आरव ने तिरछी निगाहों से अयान की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, हो गया वॉट? अयान ने हैरानी से पूछा। आरव ने जवाब में कहा, पहले पूरी बात सुन तो लो। मैं आयु के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें डांटने के लिए ही आया हूँ। मैं और आयु कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम उसकी लीव का अरेंजमेंट कर देना, आरव ने काफी शांति से कहा। आरव की बात सुनकर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आप हनीमून के लिए जा रहे हैं? देखिए, एक महीने से ज्यादा की छुट्टी मैं सैंक्शन नहीं कर पाऊंगा। एक महीने? मुझे सिर्फ 4 दिन की छुट्टी चाहिए, आरव ने सिर हिलाकर कहा। 4 दिन के दिन हनीमून के लिए कौन जाता है? वैसे कहाँ जा रहे हो आप? अयान ने पूछा। दुबई, आरव ने जवाब में इतना ही कहा। आरव बार बार दुबई क्यों जाता था ये अयान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि छवि भी वहां जाती रहती थी। अयान ने आरव की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि अपने काम से जा रहे हो, पीछे से आयु को अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको उस पर यकीन नहीं है। आपके पीछे से वो हॉस्पिटल आ जाएगी, उस पर निगरानी रखने के लिए आप उसे अपने साथ लेकर जा रहे हो। अरे वाह, तुम तो काफी समझदार हो गए हो, जब इतना समझ आ ही गया है तो जो मैंने कहा है वो करो, आरव ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर आगे बोला, वैसे काम के साथ साथ मैं उसके लिए टाइम निकाल ही लूंगा। मतलब आप दोनों के बीच सब ठीक हो गया है? अयान को पूछने में हिचकिचाहट हो रही थी, तो आरव ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, सब ठीक हो गया है और अब सब सही से भी जा रहा है। मुझे बस आयु को फैज खान से बचाना है, बाकी हम दोनों की लाइफ सॉर्टेड है। अयान ने उसकी बात पर हामी भरी, वो आरव के लिए खुश था। अयान अपनी चेयर पर आया और लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगा। आरव उसके सामने आकर बैठ गया था। उसने आयु की एक हफ्ते की लीव सैंक्शन करने के बाद आयु और मिस्टर कपूर को उसे मेल कर दिया था। फिर अयान ने आरव की तरफ देखकर कहा, मैंने एक हफ्ते की छुट्टी सैंक्शन की है, अब थोड़ा टाइम निकाल ही रहे हो और सब ठीक हो ही गया है, तो 2-3 दिन और दे दीजिएगा मेरी फ्रेंड को। डोंट वरी, मैं पीछे से सब संभाल लूंगा, आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। वो उठकर जाने को हुआ, तभी अयान ने उसे रोकते हुए कहा, भाई कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? आरव वापस चेयर पर बैठ गया। उसने जवाब में कहा, बोलो क्या कहना है? अपनी फ्रेंड के फेवर लेने के अलावा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर उसने गलती की तो उसे उसकी सजा भी मिलकर रहेगी। उसी की गलतियों की वजह से हम अब तक दूर थे, तो अब मैं उसकी और गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है, अयान ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने अपना टोन थोड़ा सीरियस किया और धीरे से बोला, चलिए ऐसे डॉक्टर बात करता हूँ, वरना मेरे लिए बोलना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। जो है सीधे सीधे कहो, हमारे बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई हो, आरव ने जवाब दिया। उसने फिर घड़ी की तरफ देखा और बोला, 15 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, उसके बाद मुझे वापस जाना है। आरव के टाइम लिमिट देते ही अयान जल्दी से बोला, ठीक है, जब आपके बीच सब कुछ हो ही गया है तो आपको आयु की हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा। गलती से भी वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, उसका यूट्रस थोड़ा वीक है। हाँ, प्रॉपर मेडिकेशन के बाद वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन अचानक से नहीं। और अगर हो गई तो? आरव ने सीधे सीधे पूछा। पहली बात तो ये कि वो कंसीव ही नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर कर भी लिया तो 9 मंथ कम्प्लीट नहीं होंगे। 9 मंथ कम्प्लीट भी हो गए लकीली तो हम बच्चे और उसमें से किसी एक को ही बचा पाएंगे। इस तरह की सिचुएशन ना आए इसलिए आपको पहले ही समझा रहा हूँ, बाकी आप मुझसे बेहतर समझते हो, अयान ने सब कुछ समझा दिया था। अयान ने देखा पूरी बात जानने के बाद आरव के चेहरे पर मायूसी के भाव थे, वो कुछ मिनट के लिए कुछ भी नहीं बोला। अयान ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, आप ज्यादा मत सोचिए, ऐसा नहीं है कि वो कभी माँ ही नहीं बन पाएगी, बस उसकी बॉडी को उसके लिए पहले से तैयार करना होगा। उसे पता चलेगा तो उसे दुख होगा, आरव ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, ना ही मैंने इतने आगे का सोचा है। पर सुबह दादी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि आयु प्रेग्नेंट है। हालांकि ये एक छोटी सी गलतफहमी ही थी और मैंने तुरंत उन्हें सब कुछ बता दिया था, पर उस एक मोमेंट में दिल ने हजारों ख्वाब बुन गए थे। नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में इतने आगे तक बढ़ूंगा। मुझे तो बच्चे पसंद भी नहीं है, फिर भी मैं एक बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, और आज ये सब पता लगने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं इतना बुरा महसूस कर रहा हूँ तो सोचो आयु पर क्या बीतेगी जब उसे सच का पता चलेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो एक डॉक्टर है और सब जानती हैं। अपनी बॉडी को ठीक से समझने के लिए ही उसने ये प्रोफेशन चुना। वो काफ़ी ग्रो कर रही है, वरना शुरुआत में आपने देखा नहीं, उसकी बॉडी बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाती थी, लेकिन अब वो आसानी से नहीं थकती है, अयान ने बताया। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अगले ही पल हर एक परेशानी के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसने अयान की तरफ देखकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, ठीक है फिर, जब वो इसके लिए तैयार होगी खुद ही अपना देख लेगी, हम किसी अच्छी गायनिक को कंसल्ट कर लेंगे, और इस बारे में हमारी बात हुई है, आयु को मत बताना। अयान ने उसकी बात पर हामी भरी। आरव फिर से जाने को हुआ तो अयान जल्दी से बोला, अरे मेरे 15 मिनट पूरे नहीं हुए हैं, मुझे आपसे और भी बात करनी है। आपने फैज खान के बारे में क्या सोचा है? आप ज्यादा दिनों तक आयु को हॉस्पिटल आने से रोक नहीं पाओगे, सारी बातें आज ही करोगे क्या? मुझे उस इंसान के बारे में बात ही नहीं करनी है, कोशिश करो उसे यहाँ से हटवाकर कहीं और शिफ्ट कर सको, आरव ने चिढ़कर जवाब दिया। फिर अयान ने धीरे से कहा, मॉम उससे मिलने आती रहती है।
हाँ वो तो यहाँ आएगी ना, खुद के बच्चे तो संभाले नहीं गए, अब दूसरों के बच्चों की बेबी सिटिंग करती हुई घूम रही है। यू नो वॉट अयान, उनका कुछ नहीं हो सकता तो मेरे सामने उनका जिक्र भी मत किया करो। छवि का नाम आते ही आरव गुस्सा हो गया। वो वहां से जाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कोई और बात करनी है तो मैसेज में लिखकर भेज देना। फिर आरव ने अयान के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया। अयान भी अपने कामों में लग गया था। आरव अपनी गाड़ी में था और हॉस्पिटल से सीधा खुराना इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा था। अयान ने आयु की हेल्थ कंडीशन के बारे में जो भी बताया था उसके बाद से उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने गाड़ी यू टर्न ली और वापस खुराना मेंशन जाने लगा। आरव गाड़ी ड्राइव करते हुए खुद से बोला, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है मुझे, सुबह वो सब नहीं करना चाहिए था। आई होप इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। आयु का सोचकर आरव बेचैन होने लगा था। अब तो वो घर जाने का वेट नहीं कर सकता था। उसने तुरंत आयु को कॉल लगाया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है तो हम शाम को जाना रहने देते हैं। आयु के कॉल रिसीव करते ही आरव झट से बोला। आयु का कॉल आया तब आयु पैकिंग करके हटी थी। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, अच्छा तो अब तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तब तुम कहाँ गए थे जब मेरी मेडिकल कंडीशन पता होने के बावजूद तुमने सुबह मेरे साथ वो सब किया? मैं ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन ले ली थी, हम शाम को चल रहे हैं, और इतना गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हरकतें ऐसी ही होती हैं और अब मुझे इसकी आदत हो गई है। आयु की बात सुनकर आरव के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। उसने जवाब में कहा, ठीक है फिर चलते हैं। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हम दुबई में सिर्फ एक दिन के लिए रहेंगे, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ काम था। बाकी के 5 दिन हम तुम्हारी फेवरेट कंट्री में एंजॉय करेंगे। मैं घर आ रहा हूँ, तब तक तुम सोच लो तुम्हें कहाँ जाना है। आयु से बात करने के बाद आरव ने कॉल कट कर दिया। अयान ने जो भी उसे बताया था उसके बाद वो आयु की एक्स्ट्रा केयर कर रहा था। वहीं आयु भी आरव के अचानक इस बदलाव से थोड़ी हैरान थी। उसने हैरानी से कहा, क्या बात है, ये मुझे परेशान करने के बजाय मेरी केयर कर रहा है? ज़रूर इसने ड्रिंक कर रखी होगी, पर दिन में कौन पीता है यार, ये आरव खुराना है, ये कुछ भी कर सकता है। आयु ने आरव के बिहेवियर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ करना उसकी आदत थी। आयु ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने लगी। छवि सिंघानिया रात के वक्त बिजी रहने वाली थी, इसलिए फैज से मिलने नहीं आ सकती थी। ये उसकी ड्यूटी में था कि वो दिन में 2 बार फैज को देखने आएगी। छवि शाम के 4 बजे के करीब फैज से मिलने पहुंची। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थीं। इस बार फैज के कमरे में जाने से पहले वो इधर उधर देखकर चल रही थी ताकि गलती से भी उसे अयान न मिल जाए। अयान ने उसे रायशा के बारे में बताया था, फिर भी उसे रायशा से बात करने का टाइम नहीं मिला था, इस वजह से वो उससे बच रही थी। छवि बिना अयान से टकराए फैज के कमरे में पहुंच चुकी थी। उसने रूम के बाहर आकर राहत की सांस ली और बड़बड़ा कर कहा, थैंक गॉड वो लड़का मुझे नहीं मिला, वरना मेरी नाक में दम कर देता। इसे भी यही हॉस्पिटल मिला था क्या एडमिट होने के लिए? छवि फिर रूम के अंदर गई। उसने देखा फैज जाग रहा था और सामने लगी टीवी स्क्रीन में देख रहा था। उसके पास खड़ा उसका प्राइवेट अटेंडेंट उसके लिए चैनल चेंज कर रहा था। छवि के आते ही फैज ने उसके अटेंडेंट को बाहर भेज दिया। छवि के हाथ में कुछ पेपर्स देखकर फैज ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। फिर छवि ने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, आपको अपनी बात कहने में प्रॉब्लम होती है ना, और मैं कई बार समझ भी नहीं पाती, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है। इन पेपर्स में अल्फाबेट्स लिखी हुई है, आपको कुछ कहना है तो आप हाँ में पलके झपकाइएगा, फिर मैं अपनी उंगली हर एक अल्फाबेट पर मूव करूंगी। जहां भी करेक्ट अल्फाबेट आए आप अपनी पलके झपका दीजिएगा। जानती हूँ थोड़ा बोरिंग है और टाइम भी लगेगा, पर इस तरह मैं आपके मैसेज को समझ सकती हूँ। हालांकि छवि का प्लान वाकई काफी बोरिंग था, लेकिन फिर भी फैज के लिए इस वक्त किसी को उसका मैसेज देना बहुत जरूरी था। उसने हाँ में पलके झपकाई तो छवि मूव करने लगी। काफी टाइम लग रहा था, लेकिन फिर भी छवि ने एक सेंटेंस पूरा कर लिया था। जैसे ही सेंटेंस पूरा हुआ, छवि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। किल आरव, फैज ने उन अल्फाबेट्स के जरिए यही मैसेज दिया था। जैसे ही छवि ने उसे पढ़ा, फैज ने हाँ में पलके झपका दी। फैज का मैसेज लेने के बाद छवि को झटका सा लगा। कुछ पल के लिए वो चुप हो गई, मानो उसने ये आइडिया देकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की हो। क्या लगता है, छवि में कुछ इंसानियत बची है जो अपने बेटे को बचाएगी?